राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनाचारी यमुना यमुना तीरा वनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय होम विष्णुपाद परमम सब परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमत हिस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा द्वारका धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय भागवत धर्म की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasa. Tato Jaya Mudiraye. Nasta Prayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naisiki. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Skanda Chatva Dhyay 1 Shlok number 16. Shirshak hai Ajamil ke Jeevan ka Ithihas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hindi, I find it little. Na tatha hi agavan rajan puyeta tapadhibi yatha krishna arpita pranaha tatpurusha nishevaya. Na tata hi agavan rajan puyeta tapadibi yata krishna arpita pranas tatpurusha nishevaya. Na tata hi agavan rajan Pueta tapadibi yata krishna arpita pranas tat purusha nishevaya. Na tatai agavan rajan pueta tapadibi yata krishna arpita pranas tat purusha nishevaya. Na tatai agavan rajan tueta tapadibi na tatai agavan rajan பூயேத்தே தபாதிபி யதா கிருஷ்ணார்பிதா பிராணா தத் புருஷா நிஷேவயா நா ததா யகவான் ராஜன் பூயேதா தபாதிபி யதா கிருஷ்ணார்பிதா பிராணா தத் புருஷா நிஷேவயா. வைஷ்ணவீஸ், ந ததா யாகவான் ராஜன் புயேதா தபாதிபி யதா கிருஷ்ணார்பிதா பிராணா தத் புருஷா நிஷேவயா. ந, நஹி, ததா, உசி பிரகார், ஹி, நிஷ்சயி, அகவான், பாப கர்மோ சே பரா மனுஷ்ய, ராஜன், ஹே ராஜா, பூயேத, பவித்ர ஹோ சக்தா ஹே, தப ஆதி பி, தபஸ்யா, ஆத்மசயம், ब्रह्मचर्य तथा अन्य संस्कारों को संपन्न करने से, यथा जिस प्रकार कृष्ण अर्पित प्राणः, भक्त जिसका जीवन कृष्ण भावना भावित हो, तत्पुरुष निषेवया, श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपना जीवन लगाने से. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. हे राजन, यदि पापी व्यक्ति श्री भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस प्रकार यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है. तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पूर्व में वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता. तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, तत्पुरुष गोतक है कृष्ण भावना अमृत के प्रचारक का, यता गुरु का. श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा. प्रामाणिक गुरु अर्थात आदर्श वैष्णव की सेवा किए बिना ऐसा कौन है जिसका माया के फाश से उद्धार हो सके. यही भाव अन्य अनेक स्थानों पर भी व्यक्त हुआ है. श्रीमद् भागवतम में पांचवा स्कंद पांचवा अध्याय दूसरा श्लोक में कहा गया है, मत्स्वेवम द्वारा महु विर्मुक्ते. यदि कोई व्यक्ति माया के पास से मुक्ति चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त महात्मा की संगति करनी चाहिए. महात्मा वह है जो 24 घंटे श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है. जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9:13 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं. वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं. इस प्रकार महात्मा का लक्षण यह है कि श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य व्यवस्था नहीं रहती. मनुष्य को पाप फलों से मुक्त होने, मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने तथा कृष्ण प्रेम में प्रशिक्षित होने के लिए वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, यह महात्मा सेवा का फल है। निसंदेह यदि कोई शुद्ध भक्ति सेवा में लग जाता है तो उसके पाप में जीवन के सारे फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की आवश्यकता पापों के तुच्छ ढेर को नष्ट करने हेतु नहीं, अपितु श्री कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश की पहली झलक पाते ही कोहरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की सेवा प्रारंभ करते ही उसके पाप फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कृष्णार्पित प्राण शब्द उस भक्त का द्योतक है जो अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा करने में अर्पित कर देता है, न कि अपने आप को नारकीय जीवन के मार्ग से बचाए जाने हेतु। एक भक्त नारायण परायण या वासुदेव परायण होता है, जिसका अर्थ यह है कि वासुदेव मार्ग या भक्ति मार्ग ही भक्त का जीवन एवं प्राण है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चना बिव्यति, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में 17वें अध्याय में आता है। ऐसा भक्त कहीं भी जाने से भयभीत नहीं होता। एक मोक्ष की ओर जाने का उच्च लोकों का मार्ग है और दूसरा नरक लोकों में जाने का है, किंतु नारायण परायण भक्त को जहां भी भेजा जाए वह निडर रहता है। वहां जहां भी रहे एकमात्र श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहता है। ऐसे भक्त को नरक तथा स्वर्ग की चिंता नहीं सताती, वहां तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करने में लीन रहता है। जब भक्त को नारकीय दशा में डाल दिया जाता है तो वह उसे श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। तत्तेनुकंपम सुसुमिक्षमाना, इस श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है श्लोक। वह विरोध नहीं करता कि ओ मैं श्री कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे इस कष्ट में क्यों रखा गया। उल्टे वो सोचता है ये श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसा मनोभाव उसी भक्त के लिए संभव है जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपने आप को लगाता है। सफलता का यही रहस्य है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगना ललिता श्री विशाखान्वितंश। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुय एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता Radhakanta namostute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari rishabhanu sute devi ramami hari priye shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhar shri vasadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 ramo hare ramo 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 hare 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 krishna to sabhi ka swagat hai aaj ke prabhat kalin shrimad bhagavatam mein jo log pehli baar उपस्थित हैं उनको संक्षेप में बताएं कि ये श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद में ये श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं तो संक्षेप में कथा ऐसी है कि महाराज परीक्षित को शाप दिया गया था कि 7 दिन में उनका निधन होगा लेकिन वो कोई साधारण राजा नहीं थे सबको पता चल गया कि ऐसे ऐसे शाप मिला है लेकिन तो राज ऋषि थे तो आ गए गंगा के तट पे और ये निर्णय लिया कि मैं अभी क्या करूं तो ऐसे संदर्भ में क्योंकि वो खुद महान थे तो ऐसे लोग हजारों में लोग आने लगे कोई साधारण लोग नहीं सब वैरागी बाबाजी स्वामी लोग सब पूरी तरह से शुद्ध आत्माएं सब आ गईं क्या वार्तालाप होगा क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तो इसमें से चुना गया एक 16 साल का लड़के को सुखदेव गोस्वामी हाँ तो हम सर 16 साल का लड़का कैसे इतने लोग सब बैठे हैं क्योंकि वो कौन था कृष्ण अर्पित जो यहाँ पे बताया गया ना पूरी तरह से समर्पित भगवान के सेवा में लगा हुआ उनका मन पूरा लगा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति से ही सुनना है तो उसके लिए सब लोग आए थे तो ये तो छठवां स्कंद है इसका मतलब 7 दिन में कई दिन तो चले गए और पिछले इसमें सुखदेव गोस्वामी ने बताया नरक के बारे में तो महाराज परीक्षित सोच रहे हैं वैसे तो उनके ज्यादा दिन बचे नहीं है लेकिन वो सोच रहे हैं अरे ये नरक जैसा भी जगह है तो ऐसे लोगों का क्या होगा कुछ है क्या कुछ तरीका कि लोगों को भी बचा सकते हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा हाँ है तो उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा लेकिन महाराज परीक्षित को पसंद नहीं आया क्योंकि वो जानते थे कि प्रायश्चित करने से क्या होगा जो पाप करने की प्रवृत्ति है हाँ आदमी देखता है कि कुछ गलत करने से जेल जाना पड़ेगा लेकिन जेल जाने के बाद वो फिर बाहर आता है फिर वही गलती ऐसे करता है ना कितने बार भाई कितने बार जेल जाना पड़ा क्योंकि प्रवृत्ति नहीं जाती इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा ये प्रायश्चित तो सही नहीं लग रहा है तो फिर महाराज अपने सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे और बताए हाँ जो ज्ञान मार्ग में जाता है हाँ कर्मकांड की बात को छोड़ दो हाँ सबका फिर यही बताया गया है सिर्फ देखो कितना आसान है भागवतम अगर आप सुनेंगे अगर हम भी चाहते हैं कि शुद्ध हो जाए भक्त आज के इस एक श्लोक में पूरा सीक्रेट खोल दिया है एकदम सिंपल कर दिया है कुछ नहीं करना है आपको ज्ञान मार्ग ने वो मार्ग ने ये मार्ग ने सिर्फ ऐसे महात्मा को खोजो अगर मिल गया पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दो इसका परिणाम क्या होगा क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं आप सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से समर्पित होके पूरा उनका लक्षण गुण आप में आ जाएगा है ना जिसकी सेवा करते हैं उनका गुण पूरी तरह से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगा लेकिन एक खास बात बताया यहां पे कि कोई जाकर सेवा करता है इससे नहीं करता है कि डर से मेरे को नरक तो नहीं जाना पड़ेगा ये डर से यह बताया कि यह ऐसा भक्त होता है जो महाराज परीक्षित ने पूछा था अरे नरक, लेकिन आज के श्लोक में बताया गया कि वो भक्त नरक जाने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब पूरी तरह से निर्भय, कुछ भय ही नहीं है। कैसा लगता है ना, निर्भय रहे जीवन में। हाँ, लेकिन यही एक तरीका है जहां पे, तो इस तरह से हम यहां इस श्लोक में बताया कि पिछले मैंने कुछ बताया, सुखदेव गोस्वामी खुद बता रहे ब्रह्मचार्य का पालन करो, वो तपस्या करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, उससे भी पूरी तरह से तुम्हारी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। लेकिन एक ऐसे महात्मा, हाँ ये उदाहरण दिया गया ना, सूरज के जस जैसे ही थोड़ा सा भी उदय हो जाता है तो अंधेरा चला जाता है, उस तरह से एक महात्मा के संग में आने से, ऐसे कितने भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन वो समर्पित हो गया तो उसके जितने भी बड़े बड़े भंडार है पाप के, जैसे सूरज के किरण से पूरा नष्ट हो जाता है, सब चले जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको सुबाल सका प्रभु सुन के, है ना, जाके उनके सामने जाओ कितने करोड़ों जन्मों के पाप लेके हम घूम रहे हैं, और ऐसे एक समर्पित एक जीवन में होने से पूरा, लेकिन यहां बताया है प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन होता है महात्मा। तो यहां पे फिर भगवद गीता से बताते हैं कि महात्मा वही होता है। हमारे देश में तो महात्मा के नाम पे ना लोगों को सही मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रभुपाद अपने कई क्लास में बताते हैं कि महात्मा गांधी जी, लेकिन महात्मा गांधी जी के प्रवचन सुनने के लिए कोई हिमालय से साधु लोग नहीं आए, आए कोई, तो वो महात्मा सही महात्मा है। तो महात्मा का अर्थ है जिन्होंने पूरी तरह से दैवी शक्ति योग माया का पूरा आश्रय लिया है, यानी उनका जीवन का कार्य है, जो उनकी वाचा है सब उससे समर्पित है, वो महात्मा पूरे अनन्यम मन से भजन करता है, उसको पूरी तरह मालूम है कृष्ण कौन है और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, बस ऐसे महात्मा को महात्मा कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को महात्मा। तो ऐसे महात्मा के संग में जो आता है वो महात्मा, वो भी महात्मा हो सकता है, ऐसे यहां प्रभुपाद आसान करें। लेकिन आज के इस श्लोक में ये सब जानने के बाद हम प्रभुपाद के ही एक जीवन चरित्र में एक ऐसे उदाहरण आता है, सुनने के लिए आसान है लेकिन जरूरी नहीं है कि श्रद्धा हो। तो जैसे एक बार शिकागो में प्रभुपाद थे तो हरे कृष्णा आंदोलन बहुत फेमस हो रहा था, और शिकागो ऐसा शहर है वहां पे क्राइम रेट वर्ल्ड में नंबर वन है, लूटना, मर्डर करना, रेप करना, घर जला देना, ऐसा रोज का चलता है, पुलिस भी कंट्रोल में नहीं कर सकती, मिलिट्री को बुलाना पड़ता है, ऐसा शिकागो नोन फॉर माफिया, यू नो शिकागो यानी माफिया, अंडरवर्ल्ड। तो वहां के पुलिस कमिश्नर बोले क्या है, मैं देख रहा हूं कि हरे कृष्णा लोग, मैं इन लोगों को जानता था पहले ऐसे थे, लेकिन अभी ऐसे हो गए, ऐसे कैसे हो गए। तो आए प्रभुपाद से मिलने, हम लोग बहुत त्रस्ते हैं, आपके पास कुछ सोल्यूशन है क्या इसके लिए। तो प्रभुपाद ने कहा है सोल्यूशन है इसके लिए, आप है ना हमारे लिए एक ऐसा जगह दे दो शिकागो शहर में, हम लोग जोरदार कीर्तन करेंगे और जो भी आएंगे उनको प्रसाद वितरण करें, बस इतना सुविधा कर दो आप। वो क्या, वो लेफ्टिनेंट पुलिसमैन, उसका ट्रेनिंग था, इनको कंट्रोल करना है तो कुछ मशीन गन लेके उड़ाओ, ऐसे करो वैसे करे, वो विचार लेके आया हुआ, वो सोच रहा है कि साधु जी ने शायद इनको समझ में नहीं आया मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो वो तो कैसे होगा, नहीं वो तो कीर्तन करो और प्रसाद दे दो, उससे क्या परिवर्तन होने वाला है, तो क्योंकि जितना आसान है लेकिन उसका दिमाग उतना आसान नहीं था इसलिए, लेकिन प्रभुपाद वॉज वेरी क्लियर, उन्होंने भी क्लियर था, है ना, यही तो युगा धर्म है, हरिनाम कीर्तन हो यार, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग, आप कोई नहीं जाता है ऐसी जगह पे, प्रभुपाद एक उदाहरण है ना, कुछ भय ही नहीं था उनको, बस श्रद्धा थी कि अपने गुरु ने आदेश दिया है, हरि नाम में शक्ति है, और गुरु ने अगर कहा है तो मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तो हमारे जो उड़पी के जो संप्रदाय है वहां पे तो अगर एक व्यक्ति वहां का मठ से वो प्रेरित हो गया तो बाद में पता चला किससे प्रेरित हुआ, और वो छोड़ के गया अमेरिका प्रचार करने हो, और कुछ सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो जब वापस आया तो उसको बहिष्कार कर दिया, तुम ऐसे जगह पे जाके आए हुए तुम दोषित हो गए, यानी वैसे जगह जाना ही दोषित, हेलिश, तुम्हारा सब चला गया। तो वो व्यक्ति से कई बाद में कुछ भक्त लोग मिले, बोलते क्या हुआ, तो बोलते नहीं मैं प्रभुपाद से प्रेरित हो गया, बोले प्रचार करना चाहिए, ही स्टिल देयर ना, एंड उनका पर्याय अभी इस हिज पर्याय, बट ही कैनॉट डायरेक्ट वर्शिप कृष्णा, सी, तो यानी कौन एग्जैक्टली कृष्णा अर्पित जो बोलते हैं ना हम लोग, हाँ कौन है ये पहचानना इतना आसान नहीं है। ये जो श्लोक में बार बार ये वर्ड आ रहे हैं ना, ये 16 कहाँ गया, ये जो शब्द है कृष्णार्पित प्राण, कृष्ण अर्पित प्राण, ये है उसमें गुण। तो प्रभुपाद आगे ये भी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऐसे भक्त का स्वभाव क्या होता है। सो उससे पहले मुझे भी सिर्फ एक याद आ रहा है कि जैसे एक भक्त ही दूसरे भक्त को पहचान सकते हैं ना, सब लोग थोड़ी पहचान सकते हैं कौन है। तो अद्वैत आचार्य के कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने उनका आविर्भाव दिवस, तो अद्वैत आचार्य जब थे शांतिपुर में, पूरे ब्राह्मणों के लीडर थे वो, जितने सारे ब्राह्मण लोग हैं उनके टॉप लीडर कौन है, अद्वैत आचार्य, यानी कुछ भी वो करेंगे तो पूरा न्यूज स्प्रेड हो जाता था, अद्वैत आचार्य ने ऐसा किया। तो जो साल में एक बार जो श्राद्ध का ये होता है ना पूर्वजों के लिए, उनको अगर कोई इसमें विष्णु को भोग चढ़ा के उसे फिर ब्राह्मणों में बांट दिया जाता था, और वो जो श्राद्ध पात्र होता है उस दिन वो उस ब्राह्मण को दिया जाता है सब ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ। तो ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग आए थे, सब फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, जो तप ज्ञान मन इंद्रिय नियंत्रण करने में, और अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध पात्र सबके सामने, सब लोग देख रहे, जो बहुत ही एक सम्मान है, वो जाकर हरिदास ठाकुर को दिया। हरिदास ठाकुर एकदम आश्चर्य, बोले आप क्या कर रहे हैं, मैं मलीच, मैं ऐसे घर में जन्म लिया, मैं आप क्या कर रहे हैं सब ब्राह्मणों के साथ। अद्वैत आचार्य कहते हैं मैं तुम अकेले को मैं अर्पण करता हूं ना तो ये करोड़ों ब्राह्मणों को दिया जैसा है। तो इससे आप समझ सकते हैं हरिदास ठाकुर ऐसे घर में जन्म लिए थे, लेकिन वो कृष्ण अर्पित प्राण थे पूरा, तो अद्वैत आचार्य को मालूम था, इसलिए वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहते थे, है ना, जितना बड़ा आदमी है अगर कुछ भी काम करता है अगर वो कुछ गलत भी हो तो उसको एकदम बड़ा चढ़ा के होता है। सो उसी तरह से अद्वैत आचार्य के भी ऐसा ही हो सकता है, अरे क्या किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल डरे नहीं, दुनिया को बताना है कि सच्चा कौन है महात्मा, सच्चा कौन है कृष्ण अर्पित प्राण, वो दुनिया के पापी लोगों को मुक्त कर सकता है, तो उसका मुक्ति के बारे में कुछ सोचना है क्या। और ऐसे ब्राह्मण जो इतने विद्वान और तपस्या और उसके बल पे अपने शक्ति है उनको, वो खुद को नहीं आप मुक्त कर सकते, वो दूसरों की क्या मुक्त करेंगे। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य ने अपने इस उदाहरण से तर विशेषकर प्रभुपाद इस तात्पर्य में नारायण परायण, फिर से नारायण परायण का ये उल्लेख किया है, ये बताने के लिए कि और यहाँ पे वो एक ऐसे भागवतम के ये आगे अध्याय में आने वाला उसके बारे में उल्लेख करते हैं प्रभुपाद। और वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अरे यार पेजेस बहुत बदलते जा रहा है। कृष्णार्पित प्राण शब्द उस भक्त का द्योतक है जो अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा करने में अर्पित कर देता है। एक भक्त नारायण परायण या वासुदेव परायण होता है, जिसका अर्थ यह है कि वासुदेव मार्ग या भक्ति मार्ग ही भक्त का जीवन। तो यहाँ पे प्रभुपाद उस घटना को याद कर रहे हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिव्यति, ये श्रीमद् भागवतम के 17:28 में। ये कौन बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ये शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं। हाँ, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे ले रहा है, ये ले रहा है कि एक ऐसा भक्त हो कुछ नरक जाने या वहां जाने से वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ क्या लगा है, मेरे को तो सेवा करना है। हाँ, कौन से जगह पे भी डालो, करना क्या है, सेवा। तो मुझे स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो या गोलोक में भेजो, करना कल एक ही काम है। तो इसमें वो चित्रकेतु की कथा के बारे में, तो संक्षेप में ये भी देखो कितनी अच्छी है, कितना रोमांचक है, लेकिन चित्रकेतु के जीवन में भी कैसे ऊंचा नीचा हुआ है ना। राजा था, सब कुछ थे उसके पास, सब कुछ थे, सब कुछ, धन पावर वीर, फिर भी बहुत निराश था, सिर्फ एक कारण कि उसके वंशज कोई नहीं थे। तो आचार्य बताते हैं कि भौतिक संसार का एक नियम है, आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, वो आपको बहुत दर्द दे रहा है, तो ये सब कुछ होने के बाद भी आपको कुछ कुछ नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि बहुत अट्ठा खट्टा आदमी है, बहुत पावरफुल है, धन है, सब यश है, लेकिन उसके शरीर के पैर में कांटा चुभ जाता है। अभी कांटा चुभने के लिए कितना जगह चाहिए, इतना सा, और शरीर इतना बड़ा है, लेकिन उसका मन पूरी तरह से वहां पे, वो कुछ और चीजों को आप भोग कर सकता है वो ऐसे हालत में। तो इस तरह से चित्रकेतु की हालत थी। तो बस वो राजा चाहता था कि वंशज बढ़े, और उसको लगा बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो पर्वत मुनि ना, कि अंगिरा मुनि आए, उन्होंने कहा बाबा ऐसा नहीं है, तो लेकिन राजा तैयार नहीं था, तो ठीक है, उनको वरदान दिया, उसमें से एक रानी गर्भवती हो गई, बच्चा पैदा हो गया, उसको नाम बता दिया था कि अशोक रख दो, तभी भी राजा को समझ में नहीं आया ये नाम, अरे हो सकता है बच्चा छोटा है बड़ा, मेरा बात नहीं मानेगा, जब बड़ा हो जाएगा, अरे बच्चा तो आने दो। और जब ही बच्चा आ गया तो राजा इतना मोहित हो गया बच्चे से, तो स्वाभाविक है कि जो बच्चे की माँ थे उससे ज्यादा समय देने लगा, तो दूसरे रानियों की तरफ देखा ही नहीं, तो उनको लगा राजा हमारे तरफ देखता भी नहीं है, इसका कारण कौन है ये बच्चा। तो ईर्ष्या हो गई, बच्चे को मार दिया जहर देकर। उसके बाद इतना शोक अवस्था में नारद मुनि के साथ आए, वो फिर से आए, तो तभी उन्होंने उस बच्चा जो मृत शरीर में था उस बच्चे को फिर से जगाया, और वो बच्चा बोलने लगा, अरे मुझे क्यों बुलाया वापस, ऐसा बोलने लगा। चित्रकेतु सुन रहा है, सब रानियां भी सुन रही हैं, सब कौन से माता पिता, अरे मेरे तो कितने माता पिता हो चुके हैं और आगे मेरे माता पिता है, मैं वहां जा रहा था, मुझे क्यों वापस बुला गया। ये सब सुनने के बाद चित्रकेतु के दिमाग में आ रही, यार ये क्या है, पूरी तरह से एनलाइटेंड। और उसके बाद जो आज की ये जो घटना है ना, चित्रकेतु अभी तो भक्त बन गए, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया उन्होंने, लाइफ शुद्ध भक्त बन गए। और एक दिन अपने वाहन में जा रहे हैं, और वाहन में जाते समय तो एक ऐसा दृश्य देखते हैं, शायद कैलाश पर्वत की ओर हो जहां भी है, ऐसे लोग बैठे हैं सत्संग के लिए जो पूरे वैराग्य है। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में रहते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है, मन इंद्रियों को वश में किया है, इंद्रिय तृप्ति का सवाल ही नहीं आता है उन लोगों में। ऐसे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, और कथा देने वाले कौन है? शिव जी बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? पार्वती उनके गोद में बैठी है, और पार्वती का हाथ शिव जी के गले में है, और ऐसे लोग कथा सुन रहे हैं। चित्रकेतु ने देखा, चित्रकेतु ने देखा, वो मुस्कुराए, उनको हंसी आई, लेकिन उनके हंसी में कोई निंदा भाव नहीं, कोई ईर्ष्या भाव नहीं, वो भाव ऐसा था क्या महादेव भी क्या है, सिर्फ यही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इसमें उन्होंने। लेकिन पार्वती ने जब देखा, उसको लगा ये हमारी मजाक कर रहा है, हंस रहा है, तो तुरंत पार्वती ने, साधारण कोई नहीं है, अपने अपना डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम्स नहीं है कि वो डिपार्टमेंट से इसको सस्पेंड कर दो, पार्वती का शाप है ना, कैसे होगा? तो पार्वती ने शाप कर दिया, तुम असुर बनो और नरक में चले जाओ, शाप दे दिया। पार्वती का शाप, उसमें बीच में कोई नहीं आ सकते हैं, हाँ, पूरे पूरे हमारे प्रकृति की अधिष्ठा। तो चित्र केतु, आप सोचें, कुछ गलती नहीं किया था, किया था कुछ गलती? हृदय से पूर्ण अच्छे विचार, कुछ नहीं प्रॉब्लम, तुरंत अपने वाहन से रुक गया, सर झुकाया, प्रार्थना किया, और ये भी नहीं बोला कि मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, मैं आपकी जो कुछ बोल रहे हैं मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, और तुरंत नरक की ओर असुर बनने के लिए तैयार। तो क्या हुआ उसमें? इसका मतलब नरक जाने का कोई भय नहीं है, असुर बनने का भी भय नहीं है, क्योंकि हृदय में कृष्ण अर्पित प्राण, किधर भी भेजो हमको, हम तैयार है करने के लिए। तो ये प्रभुपाद इसको जरा फिर से उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे, कि किस तरह से चित्र केतु के इस बिहेवियर को देख के शिव जी बोल रहे हैं, देख पार्वती, ये होते हैं नारायण परायण, वासुदेव परायण, ये है कृष्ण अर्पित प्राण। देख क्या किया उसने। उसके बाद में पार्वती को थोड़ा सा ये लगा, लेकिन चित्र के तो चले गए, फिर आगे कौन बन गए? वो त्रासुर बनकर हम सब उसकी कथा, वो आगे ही आ रहा है इसी अध्याय में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे विशेषकर इस विषय को यहाँ पे तात्पर्य में, और वो श्लोक को, या दैट्स इट, वेयर इज इट, हरे कृष्ण, या ऐसा भक्त कहीं भी जाने से भयभीत नहीं होता, एक मोक्ष की ओर जाने का उच्च लोगों का मार्ग है, और दूसरा नरक लोगों के जाने का है ना, ये दो ही मार्ग है ना, एक तो ऊंचा लोक या तो नीचे लोक में, किंतु नारायण परायण भक्त को जहां भी भेजा जाए वो निडर रहता है, वहां जहां भी रहे एकमात्र श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं, ऐसे भक्त को नरक तथा स्वर्ग की चिंता नहीं सताती, वहां तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करने में लीन रहता है। जब भक्त को नारकीय दशा में डाल दिया जाता है तो उसे श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता है, उसके बाद वो प्रभुपाद फिर से ब्रह्मा जी के प्रार्थना को फिर से ले आते हैं तात्पर्य में, तत्तेनु कम कम सुसुमिक्षमाना, जहाँ पे ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी ये श्लोक में बताते हैं कि जो हाँ कृष्ण अर्पित प्राण होते हैं, जब ऐसे कुछ समस्या आती हैं लाइफ में, तो समझते हैं कि यार ये भी भगवान की कृपा है, हाँ ये भी मेरे लिए ही है। हाँ, हो सकता था इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन ये कृपा के रूप में मुझे थोड़ा ही आ रहा है। मेरा तो इतना मैं पापी हूँ, मेरा तो और बहुत बड़ा कोटा है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, बस इतना ही दिया है। और इस तरह से अपने सेवा को जारी रखता है, तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि यही ऐसा व्यक्ति होता है वो भगवान के धाम का हकदार जो बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, अपने संस्था जब बढ़ती जाती थी तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा एक बार, आपके यहाँ कितने शुद्ध भक्त हैं? तो प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोले कितने भक्त लोग हैं अपने इसको? बोले 5,000। तो जिसने सवाल किया था उसको पूछो क्या 5,000 से ज्यादा भी शुद्ध भक्त है? तो जो लोग बैठे थे उन लोग की शर्माने लगे, अरे हम लोग कैसे शुद्ध भक्त हैं, खाए के शुद्ध भक्त, प्रभुपाद शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद का कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से आम जो है अगर पकना है तो उसको क्या करना चाहिए, आम को पेड़ में लगे रहना चाहिए, बस पेड़ में लगे रहो, सिर्फ समय की बात है। उसी तरह से जो अपने माँ पिता का धन प्राप्त करना चाहता है, हाँ ऑटोमेटिकली आएगा, उसको क्या करना है, खाली जीवित रहना है। उसको विल में लिखा है 18 साल के बाद विल तुम्हारा हो जाएगा। तो प्रभुपाद की एक एक तरीका कितने एनकरेज कर रहे थे, कोई भी हो तुम, या कितने भी पापी हो, किसने पूछा तुमने क्या किया है, हाँ तो क्या प्रभु, वो जो श्याम सुंदर की शुरुआत की मालूम है ना उनको, वो लोग भक्ति में आने से पहले वो लोग के ड्रग्स का कुछ, उनका कुछ उसके ऊपर केस हुआ था और उनके ऊपर अरेस्ट का नोटिस आ गया, तो उन्होंने प्रभुपाद, प्रभुपाद आपसे मिलने से पहले हम लोग ड्रग्स का कुछ कर रहे थे तो उसका केस आ गया, हमको जेल जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद क्या है, अरे मैं भी ड्रग्स का काम कर रहा था, मैं तो इससे पहले मेरा फार्मेसी था, अरे जेल की क्या बात कर रहे, कृष्ण तो जन्म ही जेल में लिया है। तो इस तरह का एनकरेजमेंट से हमारा संस्था, तो किस तरह के लोग थे शुरुआत में आप देख, लेकिन ये मत भूलना कि यही लोग जो शुरुआत में आए हैं, यही लोग पूरी तरह से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई सिर्फ ऐसे महात्मा के संपर्क में आने से और सिर्फ उनकी सेवा करने से। सेवा करते उन्होंने कुछ बोला पूरे से श्रद्धा से। शुरुआत में प्रभुपाद के शिष्य कहते हमें समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, उनकी इंग्लिश हमें समझ में नहीं आ रही, सिर्फ हमारे हृदय में एक विश्वास था कि ये व्यक्ति हमारा हित के लिए बोल रहा है, बस इतना ही मालूम है कि ये हमारा भला चाहता है। बस उस श्रद्धा से हम वो जो भी बोलते हैं हम लोग करते थे, और उन्होंने ऐसा किया और उसका फल क्या हो गया, लोग सब शुद्ध भक्त बन गए, है ना। कई ऐसे भक्त लोग शुरुआत में, शुरुआत के दिनों में पूछने लगे, प्रभुपाद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमको ये सब इतना ऊंचा सब सिद्धांत बता रहे हैं, राधा कृष्ण की लीला माधुर्य भाव, हम लोग कहां से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे हम लोग, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग को कैसे। तो प्रभुपाद ने आज के जो तात्पर्य में थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद ने जवाब दिया, तुम्हारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने तुम्हारा क्वालिफिकेशन बनाया। तभी कैसे बनाया मैंने, तो ये आज का श्लोक। हाँ वो लोग उनके संपर्क में आए, हाँ उनको समझ में भी नहीं रहा था क्या बोल रहे हैं, प्रेम जाग गया, श्रद्धा जाग गई, ये व्यक्ति, क्योंकि उनके उनके फैमिली में ऐसा कोई मिला ही नहीं था उनको, उनके पास माँ बाप का प्रेम ही नहीं था, माँ बाप साथ में रहते भी नहीं थे, टूटे हुए घर से आए थे, हिप्पी बन गए, ड्रग्स ले रहे थे, उस हालत से आ गए प्रभुपाद के संपर्क और हो गए भक्त। सब कितना गंभीर विषय है, देखो कितने हम लोग सब घूम फिर के ऐसे बोलेंगे ज्ञान योग वो योग, हाँ लेकिन फिर भी प्राप्त करने के, ज्ञान में भी मुक्त करने के बाद भी अगर वो भगवान को पूरा समर्पित नहीं हुआ प्रेम नहीं जाग गया फिर से वो नीचे आ जाता है। और सिर्फ ऐसा ही एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। भगवान ऐसे भक्त के वश में आ जाते। तो क्या है सवाल, पाप पर नहीं, प्रवृत्ति कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? वो बिल्व मंगल ठाकुर अपने प्रार्थना में लिख, मुक्ति अपने घर के बाहर आके खड़े रहती है, ये मुझे स्वीकार करना, मुझे स्वीकार करना, मैं खड़ी हूं यहां पे, मुक्ति। बोलते दे मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने का, भाग जाए यहां से। मुक्ति इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, है ना। दूसरे वो एक कथा में आती है ना, हरिदास ठाकुर एक बार प्रवचन कर रहे थे, एक ब्राह्मण बैठा था, गोपाल चक्रवर्ती। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, ये मुक्ति क्या है, ये तो अरे हरि नाम तो तुम्हें भगवत प्रेम देगा, ये तो मुक्ति तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो वो भड़क गया, अरे मुक्ति को ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो गलत बोल रहे हैं सब। तो उठा, उठ के खड़े होके एकदम वाद विवाद हो गया और श्राप दे दिया उनको, अगर आप जो बोल रहे हैं वो गलत है तो गलत होगा, तुम्हारी नाक कट जाएगी ऐसे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, नाक किसकी कट गई? हरिदास ठाकुर कृष्ण अर्पित प्राण के जो लक्षण थे उसमें इतने शक्ति होती है कि ये है प्रभुपाद, महात्मा कौन है और नारायण परायण कौन है। और इसमें कई ऐसे जगह से उन्होंने उदाहरण कथा बता के हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद कौन है, आधुनिक जीवन में इतिहास में क्या किया है, उसने किस तरह का आंदोलन किया है, ये समझना उतना, कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं, हाँ इसलिए मालूम नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि प्रभुपाद इज द वन हु कैन डिलीवर। हम सब बहुत भाग्यवान हैं, प्रभुपाद ने सब छोड़ के गया, हमें सिर्फ फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करेंगे तो परफेक्ट। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की कथा सुनना बहुत अच्छा है, जैसे कल नरोत्तम दास ठाकुर की, और उससे पहले रघुनाथ भट्ट, वसंत पंचमी, ऐसे लोग कितने, उन लोगों की कथा आप सुनेंगे तो उसमें से बहुत कुछ सीखने जैसे हो। जैसे रघुनाथ भट्ट, वो कभी किसी का निंदा ही नहीं करता, अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो बोले मुझे सुनना ही नहीं है, वो भक्त है ना बस, मेरे को सुनना ही नहीं है, वो भक्त है ना बस, मेरे को नहीं सुनना है। ऐसे रघुनाथ भट्ट के किस तरह के लोगों को उन्होंने बदल दिया, अकबर के पूरे सेना के आर्मी के सब ऐसे लोगों को उन्होंने बदल दिया। तो सोचिए आप किस तरह के महात्मा है। तो उन लोगों की कथा सुनना, जैसे नरोत्तम दासुर के डाकू थे ना चंदर रायकुन, कोई तो ऐसे लोगों को सब पाप करने की प्रवृत्ति चले जाती है, ऐसे महान आत्मा के संपर्क में आकर उनके आदेशों को पालन करें, नम्रता से स्वीकार करें, तो ये हमारे हृदय के अंदर जाकर बहुत कुछ करता है। जो तुम्हारे तपस्या, वो करो ये करो सब कुछ करो, लेकिन प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है। ये भागवतम के 6वें अध्याय में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे कथा ऐसे एक व्यक्ति के बारे में होगा जो भी ब्राह्मण था लेकिन पापी बन गया। और किस तरह का पापी, उसने तो माँ बाप को भी घर से निकाल दिया, अपने पत्नी को निकाल दिया, वैश्य को रखा उसने, और लूटना खून करना ऐसे सब पाप करते गया। और उसके बाद यही बताने के लिए कि उसने भगवान का, उसने अपने बेटे का नाम रखा था, फिर उसकी महिमा कि सिर्फ नामाभास, उसने तो भगवान का नाम नहीं लिया, उसने बेटे का नाम लिया लेकिन बिना कोई अपराध से नाम लिया, इसलिए नाम में इतनी शक्ति थी कि उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वो हरिद्वार जाकर 12 साल वहां पे तपस्या कर आगे उसकी गति, तो ये आगे के अध्याय में आएगा। लेकिन आज के विशेष संदेश हमारे लिए ये है कि ये शुद्ध भक्ति या पाप करने की प्रवृत्ति, जो कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है, है ना, क्या होता है, जो किया हुआ कार्य हमें लगता है कि, लेकिन बुरी आदतें कभी भी बाहर आ जाती है। हाँ, भक्ति करते करते समय बुरी विचार को, विचार की तो बात है छोड़ दो, किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे बढ़कर ऐसे कार्य करना कभी प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और कर भी देते हैं तो कितना भयानक है। लेकिन ये सब नष्ट हो सकता है जब ऐसे महान संत, महान महात्मा जो आज सुखदेव गोस्वामी महाराज परिषद को बता रहे हैं, उसका जो प्रश्न था कि पाप करने की प्रवृत्ति कैसे जाएगी, एक ही सलूशन, एक कृष्ण अर्पित प्राण ही दूसरे को इससे मुक्त कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने भाग लिया। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न भी बोलेगी और जवाब भी देगी, वही कृष्ण अर्पित प्राण।
अरे
गोवर्धन,
थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्णा,
बहुत बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। अच्छा, और क्लास में ये बताया कि आपको ऐसे भक्त को ढूंढना चाहिए जो पूर्ण तरीके से कृष्ण को समर्पित हो गए। हमें ऐसा लगता है हम तो ढूंढ भी लिए, लेकिन हमारे प्रश्न ये है कि ये समझ में नहीं आता है क्या हमें रोक देता है कि आप ऐसे भक्त को ढूंढने के बाद भी पूरी तरीके से हम समर्पित नहीं कर पाते। हम ऐसे भक्त को ढूंढ भी लिए और ऐसे परिवेश में भी आ गए, और क्या हमें रोक देता है कि पूरी तरीके से हम समर्पित नहीं कर पाते। और आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि आप कैसे बाहर आ पाए?
नहीं, वही प्रॉब्लम है हमें। नहीं, आपका प्रश्न ये सिर्फ आपका नहीं है, प्रश्न सभी का है, क्योंकि अपने इतने जीवनों से हम भौतिक संसार के संपर्क में रहे हैं, उसकी आसक्ति इतनी तीव्र है कि वो इतने आसानी से टूटती नहीं है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, ये दो विषय हैं। एक तो सिंसियरिटी होना चाहिए, इच्छाएं आती है हमारे पे समर्पित हो जाए, लेकिन वो उतने सिंसियर नहीं है, इसलिए हम कम पड़ जाते हैं, सिंसियर नहीं है तो। लेकिन फिर भी निराश होने की बात नहीं है, हो सकता है कि हमारा कदम छोटा छोटा है, लेकिन ये निश्चित है कि हमारी दिशा जो है सही जगह पे है। तो दूसरे लोग करते हैं बहुत ही अच्छे से, हम उससे प्रेरित होते हैं, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जो कर रहे हैं। हमारे में कमजोरी है, लेकिन ऐसे भक्त लोग हमारे कमजोरी को सुधार सकते हैं अगर हम समर्पित हो जाएं। लेकिन ऐसे रिश्ते भी होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बनाना भी उतना आसान नहीं है, हर एक अपने अपने इसमें रहना चाहता है। पूरी तरह से अगर मदद चाहता है तो फिर भगवान निश्चित हम सबको। तो आपका सवाल यह है कि सब मालूम पड़ने के बाद भी अगर आप ऐसा सवाल कर रहे हैं तो आप समर्पित ही हैं, इतना मुझे मालूम है। योर क्वेश्चन इज द आंसर। या आई डोंट नो एनीवन वांट्स टू आंसर दैट। आई मीन आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा इट्स अ सिंसियरिटी, और कुछ नहीं, ये सच है। मैंने ही बोला अभी बैठ के यहाँ पे, सब बोल रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, हमारे भौतिक संसार के विषयों से बहुत ही तीव्र अटैचमेंट है, तो जब तक नहीं जाती, हाँ कम से कम मालूम तो है। तो ऐसे मुझे याद है, एक बार शुरुआत के दिन हम लोग बहुत उत्साहित रहते थे, तो एक बार ऐसे सवाल किया था, हाँ महाराज के भागवतम क्लास की बात है, महाराज क्या हमें पता चल सकता है कौन से चीजों से हम आसक्त है? ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस, अरे एक बार मुझे पता चल गया कौन से चीज आ सकते हैं, मैं उसको ठक करके काट दूं। महाराज बहुत गंभीर हो गए, प्रिया ऐसा यू नो डियर, समय ही बताएगा. जस्ट सेड बराबर ना प्रभु. हाँ चैतन्य कृपा प्रभु है ना, समय ही बताएगा है ना. तो भक्ति में कितना भी समय रहेगे लेकिन समय भी बताएगा. तो उन्होंने ऐसा क्या, डोंट वरी टाइम विल टेल यू, यू डोंट हैव टू इमीडिएटली नो किस चीजों की. हरे कृष्णा. एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग. राधा गोपाल अभय गौरांग सब पंडित लोग बैठे हैं, निताय चैतन्य प्रभु कम ऑन लेट अस, द मूड इज राइट कट इट ऑफ. चलो स्टॉप इन स्टॉप. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.